जब रामानंद जी को पता चला कि तेरी साधना अधूरी है और असंख्य युग हो गए, जन्म हो गए, यही इस निराकार भगवान तक की साधना, ज्योत स्वरूपी भगवान की साधना करते करते ओम नाम के जापता है, और जब देखा सतलोक में कबीर परमेश्वर का दूसरा रूप तेजो में, जिसके एक रोम कूप का ऊपर है, एक करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे, इतनी रोशनी भी फीकी पड़ जाए, वो आकार रूप में मनुष्य रूप में वहां पर रहते हैं, और दूसरा रूप बना के, क्यों परमात्मा जितने चाहे शरीर बना सकता है, आम संत भी बना लिया करते थे, एक सिद्धि बहुचौल्य धारा, ये परम सिद्धि युक्त पूर्ण परमात्मा है, जो चाहे सो कर सकते। रामानंद जी को सतलोक ले गए, वह देखा तकत पर बैठे हुए परमेश्वर को, जो इतना तेज, एक एक रोम को करोड़ सूर्य छुप जा, करोड़ चांद छुप जा, इतना रोशनी उनकी, और उधर से पांच वर्ष के बच्चे के रूप में गरीब रामानंद जी की आत्मा को लेकर के वहां पहुंचे। वहां पर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर, उनका वास्तविक नाम कबीर है, इसलिए वेदों में उनका नाम कबीर आया, वहां बैठे तख्त पर कबीर साहब, पांच वर्ष के बच्चे एक चवर उठाकर ऐसे चवर करने लगे कबीर साहब के सिर पर, अपने ही दूसरे स्वरूप पर। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है जो ये बैठे सामने, और ये नीचे, ये कबीर तो यहाँ का कोई सेवक होगा, कोई गण होगा, कोई देव होगा। इतने में वो तेजो में शरीर वाले भगवान मनुष्य आकार रूप वाले खड़े हुए, और कबीर साहब पांच वर्ष के बच्चे तख्त पर बैठ गए, और वो तेजो में शरीर वाले दूसरा रूप उस पांच वर्ष के बच्चे पर ऐसे चवर कर रहा है। रामानंद जी ने सोचा ये क्या भाई, भगवान और बालक पर चवर करे? इतने में वो तेजो में शरीर कबीर साहब के शरीर में समा गया, पांच वर्ष के बच्चे के रूप में वाले रूप में, और वो अपना दूसरा रूप समाप्त कर दिया, और चवर स्वयं उस पांच वर्ष के बच्चे पर ऐसे घूम रहा। तब रामानंद जी ने सोचा ये तो यही भगवान है, कबीर ही, मैं तो धोखे में रह गया, ओए होए होए, देख के कितना नादान, में भगवान मेरे साथ और मैं वाद विवाद कर रहा हूँ। उसी समय कबीर साहब ने उनकी आत्मा को वापस कर दिया, और वहां पांच साल के बच्चे के रूप में बैठे रहे, और सामने जो समाधि टूटी रामानंद जी की, सामने वो पांच वर्ष के रूप में फिर बैठे, ओए होए, फिर क्या कहा, कोट विष्णु वहाँ बसत है उस शक्ति के धाम में। विष्णु जैसी पुण्यात्मा वहाँ सभी है, इनसे भी ज्यादा अच्छी आत्मा के लोग वहाँ रहते हैं सतलोक में, जहाँ आपको दिखा कर लाया हूँ। गरीब दास कुल बोते है अल्प बस्ती निकाम, शिव शक्ति जासे हुई ये अंत कोट अवतारे, गरीब दास उस अल्प को लखे सो होए करतार, सोए करतार, वो परमात्मा है। क्या बोले रामानंद जी देखकर, तावा चित चकरित भया ये देख फजल दरबारे, गरीब दास सजदा किए हम पाए दीदार, दर्शन हुए दीदार माने दर्शन, हम पाए दीदार उस परमात्मा का, हमें दर्शन हुआ। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये परम कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम हमरा हो गया दृढ़ विश्वास। गरीब दास जी वो कबीर परमेश्वर की प्यारी आत्मा, अपने परमात्मा की महिमा जैसे तुलसीदास जी ने श्री राम जी की महिमा रामायण रूप में दोबारा रच दी थी, उनके कई हजार वर्ष लाखों वर्ष के बाद, जो की तो सत कथा जो महर्षि वाल्मीकि वाली रामायण से मिलती है, ऐसे ही गरीबदास जी ने अपने कबीर परमेश्वर का वो आंखों देखा हाल, जो स्वयं भी देख कर आए थे, वो फिर रचना जो की तो की। गरीबदास जी बता रहे हैं कि स्वामी जी रामानंद जी कह रहे हैं कबीर परमात्मा पांच वर्ष के बालक को कि मैं तो आपका बालक, आप मेरे गुरु। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि ये बर्म कर्म किए नासे, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरे हो गया दृढ़ विश्वास। होए होए, तुम ही हो निज ब्रह्म वास्तविक परमात्मा, आप ही हो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, अब मेरा दृढ़ विश्वास हो गया, मैं आपका बच्चा। 104 साल का महात्मा और 5 साल के बालक को कहते हैं मैं आपका बच्चा और आप मेरे गुरु। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, ये भरमणा भटकना करी नासे, गरीब दास नज पूर्ण ब्रह्म तुम, मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे और से हमरे तीर, इन सुनो से ये छोटी मोटी सुन और ये प्रकाश दिखे, इस काल के ज्योत दिखे, इनसे तो कहते बहुत दूर हो तुम और उरली तरफ मेरे सामने बैठे। सुन बे सुन सुन वि सुन सुन वी सुन सुन वी सुन से तुम परे और से हमरे तीरी, गरीब दास सर्वंग में अवगत पुरुष कबीर। सर्वंग में सर्वव्यापक अंतर्यामी भी और सारे सब कुछ तो ही व्यापक है। अवगत सत पुरुष कबीर, पुरुष कबीर, कबीर देव, पुरुष माने भगवान परमेश्वर, कबीर परमेश्वर। कोट कोट सजदा किए कोट कोट प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर हम पर से तव धाम। कितना बढ़िया बात लिखी है गरीबदास जी ने कि क्या बोले रामानंद जी के, करोड़ करोड़ तो प्रणाम करे अपने उस 5 वर्ष के बच्चे को, 104 साल के, और जिसके 1400 ऋषि शिष्य हो गए थे, जिसके 1400 ऋषि शिष्य हो, 1484 फिर बाद में हुए थे जब गरीबदास कबीर साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया था, 84 और संत हुए थे, पीपा जी, कबीर साहेब, रविदास जी आदि आदि, जिनके 1400 ऋषि थे, जिनके 1400 ऋषि हो उनके शिष्य कितने लाख होंगे, हिसाब लाना रामानंद के। और वो कहते हैं उस 104 साल के महात्मा ने 5 वर्ष के बालक के आगे माथा टेका, एक बार नहीं करोड़ करोड़ नाम रगड़े। ओए होए, अब जिसकी हमने तलाश है और वो मिल जा और फिर उसी के पाने का रास्ता मिल जा, तो फिर भी वो चूक रहा है तो अभिमानी प्राणी है, वो भगवान का पाने का अधिकारी नहीं है। क्या कहते हैं कि हे परमेश्वर, कोट कोट सजदा करे रामानंद जी ने और कोटि कोटि प्रणाम, गरीब दास अनहद अधर, वो वास्तविक धुनात्मक शब्दों मालिक ऊपर है, हम तो इस शरीर में सुन रही धुन को अंतिम मान रहे थे। अनहद वो वास्तव में अनहद नाथ वहां ऊपर बज रहा तेरे लोक में दाता, वो तो इससे तो असंख्य गुना ज्यादा अच्छा है। गरीब दास अनहद अधर, अधर माने ऊपर, हम पर से तुम धाम, मैंने आपका वो सतलोक अब आंखा देख लिया। अब क्या कहते हैं नादान संत ये दूसरे पंथों वाले जो कबीर साहब सतलोक की महिमा गावे, कह प्रभु का प्रकाश देखा नहीं जा सकता, वो तो नूरी आंखों से देखा जा सकता, अभी प्रकाश प्रकाश जब शरीर यहाँ रह गया तो वो दिव्य दृष्टि जागी, ऊपर तो ये चरम दृष्टि दिखती नहीं, तो वहां जब हम ऐसे आंखी चरम दृष्टि तो यहाँ रहेंगी और दिव्य दृष्टि से उसके दर्शन हो जाते हैं। कबीर परमात्मा है, आकार में है, मनुष्य जैसा है, लेकिन तेज बहुत है, तेज है तो भी आकार दिखेगा। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करता रे, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन आरे, तू अंतर्यामी तू ही है। ऐसा गीता में दिखाऊंगा आपको कि वो परमात्मा तो और है जो जीव के साथ अभिन्न रूप से रहता है, जैसे गंध रहती है वायु, वायु रहती है गंध के साथ, ऐसे वो परमेश्वर इस जीव को इधर उधर घुमाता, यही शक्ति है जो उसके साथ रहती है अंतर्यामी रूप में। अंतर्यामी एक है तू आत्म के आधारे, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पर। अब क्या कहते हैं रामानंद जी के, बोले रामानंद जी सुन कबीर करतार, गरीब दास सब रूप में तू ही बोलन हार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तुम रूप बिना और न दूजा अंश। तुम साहेब तुम ही भगवान हो और आप ही संत बनकर आए हो और आप ही मेरे सेवक बन गए, दास तुम हंस बन गए और गरीब दास तुम रूप बिना तेरे रूप बिना और नहीं दूजा अंश, तेरे बिना तो कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं भगता मुक्ता भया ये कर्म कोंद कियो नासे, मेरे सब पाप काट दिए दाता आपने, मैं आपका भक्त 104 साल के महात्मा वो 5 साल के बालक ने कहा मैं आपका भक्त मुक्त हो गया और मेरे सारे पाप कर्म कुंड किए नाश। गरीब दास अवगत मिल गए या मिटगी मन की बास, कोई निराकार बताओ था कोई साकार बताओ था, कोई निर्गुण कह था कोई सरगुण कह था, कोई प्रकाश प्रकाश दिखे था दिखा है, कोई कृष्ण न भगवान कोई शिव न मालिक कह था दाता, अब सारा विश्वास हो गया मुझे, अब मेरी सारी मन की भ्रमना और भटकना सब खत्म होगी, ये व्यर्थ वासना खत्म हुई। मैं भक्ता मुक्ता भय किया कर्म कोंद किया नासे, मैं भक्ता मुक्ता भय किया कर्म कुंद नासे, गरीब दास अवगत मिल गए या मिटगी मन की बांस। दोहु छोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीब दास हम कारणे आए हो मगजो। ये मालिक के दोहु छोड़ है एक तू और भया एक से दो, ए दाता वहाँ भी तू है और मेरे सामने भी तू है, तू ही एक से दो बनकर ये लीला कर रहे हो और हमारे लिए दाता इतने दूर आए हो तुम। अब देखिएगा भक्तात्मा, ये कुरान शरीफ एक पवित्र पुस्तक, कितना सत भरा हुआ इसमें, ये देखो कुरान शरीफ और इसमें क्या लिखा है। कुरान शरीफ आलिकल किताब वाले रे सलाफी, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, कोई संदेह नहीं, और ये मुजर्म मुतरजम बर्शियस सानवाद स्टीफन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, लेखक ने बहुत अच्छी मेहनत की है। आगे देखो ये शेरवानी संस्करण प्रकाशन लखनऊ किताबघर मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से प्रकाशित है। लेखक ने बहुत अच्छी कोशिश की है लेकिन ज्ञान पूरा न होने से ये बेचारे अधूरे रहे। ये वही कुरान शरीफ है और इसमें आपको दिखाता हूँ सूरत नंबर सूरत फुरकानी 25, ये है सूरतल फुरकानी 25 और इसके प्रश्न नंबर 604 पे नीचे देखो कबीर शब्द लिखा स्पष्ट आयत नंबर 52 में, ये आगे ये 51 है जिहादन कबीरन। अब ये तो मूल ये तो कबीर शब्द देखो आप, बिल्कुल कबीर लिखा है, ये नैनी बोला जाता है इसमें जिहादन कबीर। ऊपर देखो ये तो अरबी भाषा तो अरबी है, लिपि उर्दू है और इस लेखक ने कितना कमाल किया, कितनी मेहनत की बेचारे ने, पूरा ये पढ़ भी सकते इसमें कबीर शब्द लिखा है यहाँ पर, ये इसी की ज्योंकि तो अरबी लिखी फिर देवनागरी भाषा में, ये समझो ये अरबी ही है सारी है, ये भाषा देवनागरी होगी ये उर्दू होगी, इतना अंतर है। इसका अर्थ है कि जिहादन कबीरन, ये 52वां श्लोक देखो क्या 52वां में ताला मुतियल काफिरन व जाहिद होम भी ही जिहादन कबीरन। अब इसका हिंदी देखो ए तो ए पैगंबर, ये पैगम कुरान शरीफ हजरत मोहम्मद जी के ऊपर आई है, उन्होंने लिए आदेश है, हे पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से इसके सत आधार पर उनका सामना बड़े जोर से करना, बड़े जोर से करो उनका सामना बड़े जोर से करो। अब इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा लिख दिया, यहाँ पर कबीर शब्द लिखना है, इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है और फिर आगे देखो मैं बताऊंगा, ये दास बताएगा क्योंकि दास को थोड़ा सा ज्ञान है मालिक का, अब उन्हीं गिरजा से। ये देखो 58वीं आयत में वही है ये जो कि तो कुरान जो है शरीफ के अंदर खबीरा, ये कबीर शब्द है, ये गलती से मिसप्रिंट है, और ये कबीरन है, ये वही कबीर है। अभी 58 और 59 तक, 52 से लेकर हम सारा ही सुनाएंगे आपको। ये हिंदी देखो इधर। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा वर्बली बताता हूं क्या कहना चाहा है इसमें। कोई निराकार अल्लाह है, कोई निराकार अल्लाह है जो आदेश दे रहा है हजरत मोहम्मद को। हजरत मोहम्मद जी उसको खुदा मानते हैं। हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि जो मैं तुझे आदेश तुझे मिल रहे हैं, और ये कुरान शरीफ के आधार पर, इनको जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जो आयते हैं उनको सत मानना दलील को, और वो कबीर परमेश्वर है, और ये काफिर उस कबीर को परमात्मा नहीं मानते, और वो आपको विचलित करेंगे, कहेंगे वो कबीर भगवान हो ही नहीं सकता, तू झूठ बोलता है। तो इसलिए इसके बेस पर, इन सत शास्त्र के आधार पर, तो उनके साथ संघर्ष करना, जिहादन करना कबीर के लिए, जिहादन कबीरन उस कबीर के परमात्मा के लिए, तो संघर्ष करना उनका मानना मत, उन काफिरों का कहा मत मानना। इसका अर्थ ये फिर कहा कि ये वही परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि रची, सब शरीर बनाया, सबको तुम्हें क्योंकि गीता भी ये बताती है वो परमात्मा अन्य है जो सबके तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वही शास्त्र एक ही इशारा करें कबीर परमेश्वर की तरफ, और उस परमात्मा की ही बड़ाई के लिए अर्थात महिमा गाने के लिए मैंने तुझे भेजा है। ये काल बहुत होशियार है, यहाँ भेज देता है इनको कि पूर्ण परमात्मा की महिमा बताओ, लेकिन अपने फरिश्तों को भेज कर या उनको स्वयं अंदर प्रकट करके उनको उल्टा सुल्टी महिमा भरवा देता है। आप तो दोषी होता नहीं, उस प्रभु का इन अन्य बड़ी बड़ी आत्माओं को दोषी बना देता है गलत मार्गदर्शन करने का, और सत ज्ञान सही देता है लेकिन साधना गलत करवाता है। और यही कहा था कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और द्वादश पंथ नाम जो ले ही वो मेरे मुख आंस में ही, नाम तो तेरी महिमा गुआऊंगा कि वो परमात्मा कोई और है, उसका कबीर नाम है, उसकी महिमा गाओ, उसके भजन करो, वही सर्वशक्तिमान है, और पूजा करवाऊंगा सारी गलत। अब क्या बताया इसमें कि वो परमात्मा है, उसको मारने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है, और वो कबीर परमेश्वर है, और ये वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रचना करके 7वें दिन तख्त पर जा विराजा था, जैसे पवित्र बाइबल में आपने देखा, अब फिर दिखाऊंगा। और वो कबीर है, उस कबीर के बारे में, उस परमात्मा के बारे में किसी बाखबर से पूछ देखो, उस कबीर परमेश्वर के बारे में तो किसी बाखबर से पूछ देखो। ऐसे गीता जी के 4वें अध्याय का 5वां श्लोक, गीता जी के 4वें अध्याय का 5वां श्लोक देखिएगा, नहीं 4वें अध्याय का 34वां श्लोक, उसमें लिखा है कि उस परमात्मा के बारे में, उस परमात्मा पहले तो ज्ञान के बारे में बताया, फिर कहा कि उस तत्वभेदी संतों को ढूंढ ले अर्जुन जो उस पूर्ण परमात्मा के बारे में सतमार्ग जानते हो। ये देखो, ये अध्याय नंबर 4, अध्याय नंबर 4 देखा, अध्याय नंबर 4 और ये श्लोक नंबर 34 में स्पष्ट है कि उस ऊपर लिखा है कि पहले तो ज्ञान सुन, और दर्व ज्ञान से ज्ञान एक श्रेष्ठ है। 33 में कहा है कि धर्म जो करते हो धन से, उससे ज्ञान यज्ञ ज्यादा अच्छी है। ज्ञान से पता लगेगा कि कैसे भक्ति करनी है और कौन है भगवान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। बलिभांति दंडवत प्रणाम करने से, सेवा करने से, और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से, परमात्म तत्व के को भलीभांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब ये सभी शास्त्र एक इशारा कर रहे हैं कि भगवान तो ज्ञान बोल रहा है, अर्जुन सुन रहा है, जितना भगवान ने ज्ञान था वो बता रहा है कि ओम नाम का जाप कर, पांच यज्ञ कर और ऐसे ध्यान कर, ऐसे वक्त ऐसे कर, तू बस मेरे पास आ जाएगा। लेकिन तूने अगर उस परमात्मा के चरणों में जाना है तो उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों ने ढूंढ ले। यानी भगवान तो अपना ज्ञान तो बता रहा है कि मैं तो इतना बता सकता हूँ, उस परमात्मा को जो परम शांतिदायक है उसके लिए उन संतों ने ढूंढ लिया जो उस परमात्मा के सतमार्ग दर्शक हों, सही ज्ञान जानते हों। यही ज्ञान ये पवित्र कुरान शरीफ आपको दे रहा है, ये कुरान शरीफ। और उस सूरत आगे चलेंगे हम, सूरत नंबर वो है वही 25 नंबर, सूरत नंबर सूरत फुरकानी 25, और प्रश्न नंबर है, ये प्रश्न नंबर है इधर देखिएगा 606 और इधर है 607। अब वहीं से चल रहे हैं जो कबीरा और खबीरा शब्द आपने देखे, ये देखो ये देखो, ये खबीरा और ये खबीरन, इसी में यहाँ देखिए। अब 53 में से चला शुरू हुआ, 52 तो आपने सुन ली कि कबीर परमात्मा के लिए संघर्ष करना, नहीं मानना उन काफिरों की, और ये वही है, ये 53 वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला एक और एक खारी, और दोनों को एक आड़ देकर मजबूत रोक बना दी। यानी कितना नीचे खारा पानी ऊपर मीठा, उस भगवान ने ऐसे नहरी नहरी व्यवस्था कर रखी है। वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब जादे नसब बेटा बेटी ससुराल वाले दामाद बुआ दीदी है बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है। ये अल्लाह बोल रहा है कि निराकार बोल रहा है मोहम्मद साहब को, आदेश दे रहा है, क्योंकि निराकार सामने तो आता नहीं, इससे बातचीत भी कर लो, जैसे दर्शन सिंह जी ये कृपाल जी वाले महात्मा राधा स्वामी ये करे कि उसको सामने तो आता नहीं, बात कर सकते हैं, ये काल ऐसे बात करता है। तुम्हारा परवरदिगार हर चीज को करने में शक्तिमान है, वो दो चावे से कर सकता है। और अल्लाह काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान, अर्थात इन देवी देवताओं को तीन गुणों तक नीचे तक पूजा करते हैं ब्रह्म तक की। और काफिरों काफिर तो अपने परवरदिगार से पीट दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको, वो अल्लाह निराकार करा, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है, इन भक्तों को सबको बताना कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म के अर्थात ये सत्संग करने की कोई मजदूरी नहीं मांगता, हाँ जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, उस जिंदा वो परमात्मा कबीर साहब जिंदा रूप में आते हैं, धर्मदास को मिले, गरीबदास जी को मिले, गरीबदास जी कहते हैं जिंदा जोगी जगत गुरु वो मालिक मुर्शिद पीर, इन्होंने अपने हिसाब से इसका अर्थ कर दिया चैतन्य ने, जिंदा ही लिखना था। उस जिंदा जिंदा माने उस जिंदा रूप में आए कबीर, क्योंकि मोहम्मद साहब को मिले थे कबीर साहब आकर इसी रूप में, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो कबीर अभी वेद बताएगा वो कौन है जो नहीं मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है, अर्थात जो पाप तुम न कर रखे वो काट देगा परमात्मा। जिसने आसमान और जमीन में, ये वही परमात्मा जिसने आसमान और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है 6 दिन में, सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह कबीर है, अल्लाह बड़ा, यहाँ कबीर लिख देते, वह अल्लाह कबीर है, कबीर वो अल्लाह कबीर, वो 6 दिन में सृष्टि रची, उसको सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, जिसका पवित्र बाइबल प्रमाण देता है, वह अल्लाह बड़ा यानी कबीर है, रहमान है, वह रहमान वास्तव में वो दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इलम वाले से पूछ, देखो बाखबर जो उस परमेश्वर के बारे में सही जानता है, तो उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, ए मालिक बोल सतगुरु देव की जय। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वो कबीर परमेश्वर है और उसी ने सारी सृष्टि रची और सारा मुसलमान समाज उस परमात्मा को कहते हो तो निराकार है, वो अव्यक्त है, व्यक्त में आता ही नहीं, और कोई व्यक्त में मानता है तो झूठ बोलता है। बताओ, शास्त्रों में लेख प्रमाण प्रमाणित है पर हम उनको समझ नहीं पाए। धर्मदास जी ने कबीर साहब से पूछा था, हे मालिक, इसका मतलब जो कहानी कथा आप सुना रहे हो हमें, ये तो सत्य है, ये इसमें कोई शक नहीं, क्या बाकी वेद शास्त्र पुराण कुरान सब झूठे हैं? अगर नहीं धर्मदास, ये वेद कतेब झूठे ना भाई, और झूठे हैं जो समझे नाई, वो नादान है जिनको इनकी क्या लिखा है तो मालूम नहीं, सुनी सुनाई अटकलों पर लतीफेदार बात बना के एक अच्छे वक्ता के रूप में आकर्षित कर रहे हैं। ये स्वयं भी नरक में जाएंगे और अपने अनुयायियों को भी 84 में ठोकेंगे। वो कौन भगवान है? वो कबीर है। किसने? जो 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, ये कुरान शरीफ स्वीकार करती है, बताती है। और अब देखो ये पवित्र बाइबल, फिर देखो, क्योंकि ये ऐसा गूढ़ ज्ञान हो गया, इतना गहरा दब गया कि इसको जल्दी से हम बहुत बार सुनेंगे, समझेंगे, जब जाकर बात बनेगी। ये देखो, वही द होली बाइबल, बाइबल लिटरेचर रिवाइज्ड एडिशन, और ये यहां से प्रकाशित है, इंडियन बाइबल लिटरेचर 67 ब्रांच रोड, बरका रोड, किलपुर, चेन्नई यानी बम्बई में, हाँ चेन्नई में, मद्रास से। अब यहां देखो इसके उत्पत्ति ग्रंथ में, ये देखो, परमात्मा ने 7 दिन में सृष्टि रची, और ये देखो पहला दिन, ये देखो दूसरा दिन, देखिएगा तीसरा दिन सृष्टि का, और चौथा दिन, यहां देखो फिर पांचवा दिन, ये पांचवा दिन, और ये छठा दिन। अब छठे दिन में क्या किया है कि वह फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपना स्वरूप अनुसार उसकी समानता में बनाए है। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपना स्वरूप उत्पन्न किया और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसकी उसको उत्पन्न किया, या नर और नारी किया करके उनकी सृष्टि की। अब ये बताना चाहता हूँ, छठे दिन ये सारा कुछ रच दिया अब उनको, और खाने का आदेश दिया, मांस नहीं खाना। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब तुम्हारे खाने को दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। ना भगवान ने लिखा था छाट कहियो, ऐसा मांस खाना, ऐसा मत खाना, खुरकटे हुए मत खाना, ये वास्तविक आदेश है मालिक का। आगे उन फरिश्तों के और देवताओं अन्य फरिश्तों के आदेश है जो कि मान्य नहीं है, वो पाप के भागी बना रहे हैं आपको। अन्य पशु पक्षियों को भी छोटे छोटे हरे पत्ते दिए। अब देखो 7वां दिन विश्राम किया वो परमात्मा, 7वां दिन विश्राम किया, 6 दिन में सृष्टि रची, और परमेश्वर ने 7वें दिन आशीष दी और पवित्र ठहरा, क्योंकि उसने सारी सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। ये सामवेद महर्षि दयानंद संस्थान द्वारा इसका ये भाषा भाष्य है, और महर्षि दयानंद संस्थान को ये मान्य है। सामवेद संपूर्ण स्वर्गीय पंडित तुलसी राम स्वामी कृत, सर्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन आसफ अली रोड नई दिल्ली, दूरभाष इतना। इसमें 822 नंबर पर केवल संस्कृत देखनी है अपने, इनको नहीं मार इतना ज्ञान विचारों को, मेहनत बहुत की है। ये 822 नंबर श्लोक है, ये 822 नंबर श्लोक है। मनीषी भी पवते पूर्वे कबीर, ये रह यहाँ कबीर नर भी निपेत परिकोषान अशिष्टात त्रितस्य नाम जनेन अक्षरन वायोम सखा वर्धने। वो कबीर परमेश्वर है जिसने तीन नाम देकर इस जीव के छुटकारा कर रहा, त्रितस्य नाम है जन्मे जन्मत पूर्वे कबीर। अच्छा इसमें 900 इसी के 920 नंबर श्लोक में लिखा है, ये 900 सामवेद 920 संख्या नंबर 920, सह देवई सोबते वर्षा कबीर नावधि, वो कबीर है कबीर यह जो नावधि जो किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता वो कबीर परमेश्वर है। जैसा कुरान शरीफ में आपने पढ़ा था कि उसको मारने में कोई समर्थ नहीं है, वो कबीर परमेश्वर है जो नावधि किसी के द्वारा किसी प्रकार भी नहीं मारा जा सकता। और यही आपने अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 में पूर्ण विवरण सुन लिया के आखिरी में 7वें श्लोक में लिखा है, सभी सृष्टि का रचनहार सब ब्रह्मांडों का वो रचने वाला वो कबीर परमेश्वर है, वह स्वयं कबीर है। ये वेद कौन बोल रहे हैं, वो निराकार भगवान काल ने ही लिख कर दिए हैं अपने श्वासों के द्वारा। और फिर बाद में 4 ऋषियों ने सबसे पहले सतयुग के प्रारंभ में लिखे थे और उसके बाद ये अथल पुथल होती रहती है, फिर वेद व्यास जी ने ये फिर द्वापर के अंत में फिर लिखे गए, ये वही अपने पास उपलब्ध है और इन्हीं को सत मानते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं कि देखा देखी गुरु शेष हो गए, किया ना तथा विचारा टोड़ के टोड़ हो गए, अंधे की बा पकड़ी अंधे ने मारक कौन बतासी। कितना स्पष्ट ज्ञान देते हैं कि साचा सतगुर कोई ना पूछे पूछे झूठे जगपतियासी। अब जितना भी शास्त्रों के विरुद्ध साधना है सब ने स्वीकार है, कोई मन में वापति नहीं। और अब ये सत्यज्ञान समाज के सामने आ रहा है, ये गुरु लोगों के मिर्चे लड़ेंगी, जो पुण्यात्मा होंगी रामानंद जी जैसे महापुरुष वो तो अपना कल्याण करवा लेंगे और पाप के भागी नहीं होंगे। जिन्होंने केवल अपना अभिमान चाहिए और फिर पशु बनना मंजूर है लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करेंगे, वो अपने शिष्यों के भी दुश्मन और स्वयं के महादुश्मन तो है ही है और प्रभु के दोषी। काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे, वो काफिर है जो गलत ज्ञान प्रचार करते हैं। अब क्या बताते हैं कि देखा देखी गुरु से सोगे किया ना तथा विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर, ये नकली गुरुओं का शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले झूठा विवरण काल तक का दे रहे हैं और उनके अनुयायी शिष्यों पर कहते काल ठोक का पंजारा, चाहे वह कबीर पंथी है जिनके पास तीन नाम वाला सत मंत्र नहीं है, वह केवल गीत गान तर कबीर साहब को भगवान मान लेने से ऐसे नहीं। अब किसी ने मालूम है कि अमृत है शीशी में, कितना शीश है और उसमें अमृत है और वो अमृत आपके पास है नहीं, तो ऐसे मान लेने से हम भी मानते हैं कि अमृत है उस शीशी में और वो अमर कर देता है, प्राप्त आपको है नहीं तो व्यर्थ की व्याख्या है। चाहे किसी भी पंथ से संबंधित है ये सत्कर्म मानना। अब यहां समस्या आएगी कि क्या आप ही ऐसे हो कि आपको ही मालूम है क्या और सब किसी को मालूम नहीं, ये तो आप सोच लेना। इतना प्रमाण दिया जा रहा है, इसके बाद भी आपकी बुद्धि अगर यही काम करती है तो फिर आपकी मौज है, कोई किसी पर दबाव नहीं। लेकिन मेरे को आदेश दिया उस परमेश्वर ने कि मेरे सत्य ज्ञान का ढोल पीटते और ऐसे जो कि बिल्कुल प्रमाणित, अब तो सब बहन भाई शिक्षित है, अशिक्षितों को बहका लिया इन्होंने। अब कई भाई कहते हैं कि इतनी संख्या में लोग वहां जाते हैं उसमें बड़े शिक्षित लोग हैं, कोई आईएएस अफसर है, कोई आईपीएस है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, क्या वो सब पागल है? वो पागल नहीं, वो भूखे हैं भगवान के, वो तड़प रहे हैं अपने परमात्मा की तलाश में, आगे उनको अंधे गुरु टकर गए, उनमें अंदर वो भूस भर दिया जो उन जितना ज्ञान था, ये वो बेचारे अब वो क्या करें, ऐसा उल्टे ज्ञान से ऐसा भर दिया क्योंकि वो बुद्धिजीवी थे, इंटेलिजेंट से जल्दी पकड़ लिया उनका सारा जो उन्हें देना था उन नकली गुरुओं ने, अब वो आप स्वामी हो गए, अब वो दुनिया को बताने लगे उस अधूरे ज्ञान को क्योंकि ऐसा सुना सुनाया ही। वो पागल नहीं, वो चाहने वाली आत्मा प्रभु की, और प्रभु तो वही विधिवती मिलेगा जो शास्त्र प्रमाण देते हैं। फिर कहते हैं सार शब्द सरजीवन बीटी बूटी, कबीर साहब कहते हैं सार सबद सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो जन्म मरण मिट जावे। और ये भगवान, ये तीन लोग के भगवान कहते हैं अर्जुन तेरे मेरे तो गणेश जन्म हो लिए, ये जन्म मरण तो मिटे नहीं भाई। और शिव जी ने पूछा था माता से, कहा था हे माँ मैं पिता के दर्शन नहीं ढूंढना नहीं चाहता, जब मेरे दो भाइयों को नहीं मिला ब्रह्मा और विष्णु को, मुझे तो अमर कर दो। जो माता ने कहा बेटा अमर नहीं हो सकता, जन्म मरण तो तेरा बिना रहेगा, पर विधि बता दूंगी तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। ये देखो वही गीता जी और श्लोक अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5 में, ये कोई छुपाने और बहकाने की बात नहीं, अब तो समाज सियाणा है। और हाथ जोड़ दो नकली संतों का आगे, क्यों गुमराह कर रहे हो मैं, ईमान लिया भगवान कृष्ण ही मान रहे हो तो कृष्ण कह, मैं तो जन्म मरण में हो। बहुनी ते व्यतितानी जन्मानी तव च अर्जुन, तानी अहम वेद सर्वाणी तुम वेतत परंत तत्प यत संस्कृत है इसकी। यहाँ देखो, हे अर्जुन मे माने मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, अर्थात हम अविनाशी नहीं है, उन सबको तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अब कबीर साहब कहते हैं सार शब्द सर जीवन बूटी, उसने घिस घिस अंग लगा, उसका स्मरण करना होता है, एक सार नाम मिलेगा आपको और फिर उसका स्मरण करना होगा। सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, फिर उससे एक सार शब्द प्रकट होगा जो आपके इन सारे बीमारी ने काट के, आपकी आंखें खुली होंगी और प्रभु के दर्शन आप कर रहे होंगे, क्योंकि ये आंखें तो चरम दृष्टि है, अंदर उसे दिव्य दृष्टि बन जाएगी। अरस कुरुष पर अलह तकत है खालिक बननी खाली, अरस कुरुष पे आखिरी में परमेश्वर का तख्त है, और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब की अबदादी, जो 180,000 पैगंबर हुए हैं मुसलमान धर्म में, उन्हीं के लिए बताया परमात्मा का ऊपर स्थान है। और गरीबदास जी कहते हैं कि श्वेत गुमट सिर छत्र विराजे, और देखत ना उस चेहरे नु, चेहरा मने आकार में हो परमात्मा, श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, श्वेत गुमट सिर छत्र विराजे, ऊपर श्वेत गुमज है भगवान कबीर परमात्मा जहाँ सतलोक में रहते हैं, और कबीर साहब विराजमान है और उनके ऊपर एक छत्र तना हुआ है, और देखत ना उस श्वेत गुमज है गुमज, और वहां पर एक तेरा उसका मालिक का है, उसको नहीं देख रहे, वो कबीर परमेश्वर है। सार शब्द सर जीवन बूटी घिस घिस अंग लगावे, और कहे कबीर तुम सतकर मानो वह जन्म मरण मिट जावे। गरीबदास जी कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, और सब हंसों का वास है नहीं बसती नहीं गांव। सोहम ऊपर और है उसको ताकी कर ले सेव, शिव के ऊपर और है वाह की कर ले सेव। अब कबीर साहब बता रहे हैं धर्म दास ये जग बोराना कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा जग से कहिए वो राम निहारा, वो परमात्मा प्रभु अलग है। यही ज्ञान जग जीव सुनावो सब जीवों का भरम नसावो, अब मैं तुमसे कहूँ चताई तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। तेरे देवन तीन देव ब्रह्मा विष्णु महेश, कुछ संक्षेप कहूँ गहुराई सब संशय तुमरे मिट जाई, भरम गए जग वेद पुराना आदि राम का भरम न जाना, मैं भेद नहीं जाना, इन वेद और पुराणों में पढ़ के सही रास्ता नहीं मिला। लिखा है परमात्मा आकार में है, और सभी हिंदू और मुसलमान और ईसाई सभी कह रहे हो तो निराकार है, और सिख नानक जी कहते हैं कि मैंने आंखों देखा भगवान को, और उस मजहब में भी कहते हो तो निराकार है अल्लाह, तो भगवान रब तो निराकार है, और स्वयं सचखंड में गुरु नानक देव देख कर आए, वही मूर्त सतलोक में देखी, वही काशी में कपड़े का काम करते हुए दानक देखा, तब राग श्री महला पहला गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 24 पे और पौड़ी नंबर 29 में कहा है, एक समान दोई सवानी नाल भलके भौकाई सदा बियाल, कूड़ा कोड़ छुरा मुठ मुर्दार वो धानक रूप रहा करतार। फिर कहते हैं जो सतलोक में देखा था जब तो जिंदा रूप में थे, जिंदे का रूप बना रखा था, सतलोक में लेके गया मुझे वहां परमात्मा और दिखाया जैसे रामानंद जी को देखा, और फिर कबीर साहब जिंदा के रूप में तख्त पर विराजमान हुए थे। जब उस वस्तु को देखकर नानक जी ने कहा था वाहे गुरु सतना वाहे गुरु। गरीबदास जी कहते जाखी वे कबीर की नानक की टीवा और वह सिखा का गल पड़ी कौन छोटा बेटा। सचखंड में जब बेई नदी से कबीर परमेश्वर जिंदा के रूप में आकर गुरु नानक देव को सचखंड ले गए, 3 दिन तक उनको बेहोश रखा एक तरफ ले जाकर। लोगों ने सोचा था कि वो गंगा उसमें बेई नदी में डूब गए हैं, लेकिन नहीं, उनको अंतर ध्यान करके नीचे नीचे और अपस्ट्रीम में ले गए थे कबीर साहब, और वहां एक जंगल में बैठाकर बातचीत हुई, फिर वहां से समाधि लगवाई। समाधि में ये तो बेहोश हो गया, शरीर रह जाता है, उस आत्मा को लेकर गए। तो वहां सचखंड में वो कबीर परमेश्वर ही देखा, वहां पर जिंदा रूप में थे जब उनके साथ गए। वहां आगे देखा वो तख्त पर जो परमात्मा थे उनका बहुत तेजोमय शरीर था, एक रोम कूप में करोड़ सूर्य करोड़ चांद मिला दे, ऐसा तेज था उस कबीर परमेश्वर का वहां सतलोक में सचखंड में। तो वहां देखकर कहा था वाहे गुरु वाहे गुरु, और कबीर साहब ने कहा था सत नाम से बात बनेगी, सच्चे नाम तो है और फिर दूंगा सार नाम। सार नाम तो बहुत लास्ट में जब कति हृदय से जो देख दिया जाता है किसी कमाई पूरी होगी तब वो दिया जाता है। तो कहा था कि सतनाम दूंगा, काशी रहता हूँ, जुलाहे का काम करता हूँ, काशी में हूँ मैं। लेकिन उनको तसली नहीं हुई कि ये परमात्मा काशी में क्या करेगा, गुरु नानक देव जी को पूरा यकीन नहीं हुआ। ये तो यकीन हो गया कि प्रभु यही है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, ये पूर्ण नहीं है। पहले भगवान विष्णु के उपासक थे, गुरु नानक देव जी गीता पढ़ा करते, बजलाल पांडे दोरे, और तब कहा करते एक ओंकार निर्भय, ओंकार माने युगकाल भगवान। लेकिन उसके बाद उन्होंने ओंकार को निर्भय नहीं कहा, फिर तो सतनाम श्री वाहे गुरु कहा था। ये पहले की लिखी वाणी है गुरु नानक देव जी की, और फिर उनको मिलाकर के एक मंत्र बना दिया, वो एक ओंकार निर्भय ये सारा कुछ है। तो वहां पर कहा था कि वाहे गुरु वो सतनाम मिला है। और अब गरीबदास जी भी प्रमाण देते हैं अपनी वाणी में कि झांकी वे कबीर की, झांकी माने सतलोक का नजारा देख के नानक कीती वाह, और वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। ऐसा क्यों कहा प्रभु ने कि वो ए गुरु मिले, धन्य वाहे गुरु वो वाहे गुरु का अर्थ होता है एक महिमात्मक और सराहनीय शब्द है, दोनों का प्रतीक है, महिमा भी और उसकी सराहना भी। वो गुरु सतनाम, सतनाम मिला जब यहाँ आ जाने तो नहीं आ सकते। वापस आए और वहां जब वापस तीसरे दिन मिले तो राजा के वहां से अपनी नौकरी त्याग कर चल पड़े, इस तलाश में कि इस सतलोक की महिमा को बताने वाला होगा तो उसे वहां आसपास वो संत भी होगा, वो परमात्मा आया हुआ होगा। प्रथम उदासी में वो चले थे अपने वहां से, अपने तलवंडी से, और फिर इधर अम्बाला साइड में होते हुए वाराणसी पहुंचे, और सबसे चर्चा करते गए, इसलिए कि कहीं यहाँ कोई बात बताएगा उस सच्चे बादशाह की और सचखंड की कोई जिक्र करेगा तो अवश्य वो परमात्मा वहीं मिलेगा। उनसे पूछूंगा वो कहाँ है जिससे तुमने ये ज्ञान हुआ। इस खोज में तड़पते हुए चलते हुए बड़ी बहुत कठिन यात्राएं की, और साथ में कबीर साहब ने बताया था कि गुरु नानक देव को कि मेरे गुरु रामानंद जी हैं काशी में। फिर बनारस पहुंचे, पहली उदासी देखो उनकी महापुरुष जी की। वहां रामानंद जी को पूछा तो रामानंद जी तो सर्वविदित थे, रामानंद जी के पास गए, रामानंद जी से चर्चा की उस सचखंड के बारे में। रामानंद जी ने कहा कि मैं भी देख कर आया हूं उसको, लेकिन दिखाने वाला मैं नहीं हूं, मेरा शिष्य मेरा गुरु समझो, अब तो वो शिष्य नहीं रहा। वैसे तो दृष्टि से लोगों की दृष्टि से मेरे शिष्य हैं, लेकिन मैं उनका शिष्य, वो मेरे गुरुदेव कबीर परमेश्वर हैं, कबीर आए हुए हैं। वो कहाँ है कि अपना घर आज जुलाहे का काम कर रहे हैं, कुछ कार्य ज्यादा था, आज नहीं आ पाऊंगे। अब उस प्यारी आत्मा के भ्रम तोड़ने के लिए अपने प्यारे नानक देव जी को सतमार्ग और अपना वास्तविक रूप दिखाने के लिए उस दिन वो वहां नहीं गए। कहां? रामानंद जी के आश्रम में कबीर साहब नहीं गए, नहीं तो रोज जाते थे। तब रामानंद जी ने एक सेवक भेजा गुरु नानक देव के साथ, और बाबा नानक को वो सेवक लेके कबीर साहब के उस स्थान पर पहुंचा जहां वो कपड़े का काम कर रहे थे धानक का। और जब देखा हुआ है सूरत जो की जो सतलोक में देखी थी, ये वहां पर जिंदा के रूप में थे, जिंदा रूप में। एक मुसलमानों में जिंदा महात्मा होते हैं, ऊपर काला सा लंबे चोटे वाला टोप और एक ओवरकोट काला ही होता है, उसको जिंदा महात्मा कहते हैं। ओए होए, फिर देखा ओए होए, ये तो वहां तो समय अनुसार ये अपना शरीर के वेशभूषा बदल लेते हैं, लेकिन वो भगवान सा जो वहां मैंने सत्संग में देखा था। तो क्या कहा कि फाई सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश है, ये दुनिया को ये महसूस नहीं होने देता मैं भगवान हूँ। फाही सूरत वो है जो की तो मूर्त सूरत वो परमात्मा, मलुक की वेश ये यहाँ पर इस मुल्क में आकर ऐसा वेश व्यूसा कर ली और वहां पर जिंदा रूप बने हुए थे। फाही सूरत मलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुते बार ये धानक रूप रहा करतार। ये आपको जो वाणी सुना रहा हूं मैं, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो 39 संतों का एक संग्रह ग्रंथ है, और एकमात्र ये ग्रंथ है जिसमें कोई भेदभाव नहीं था किसी में। तो बाद में अपना अपना मोर्चा मांड लिया सबने, उन संतों ने जिन्होंने इसका संग्रह किया था उसमें उन्होंने कोई मजहब नहीं बनाया था, एक पुण्य आत्माओं के लिए प्रमाण बनाया था। उसमें लिखा है महला पहला प्रश्न नंबर 24 गुरु ग्रंथ साहिब पंजाबी लिपि वाला, उसमें लिखा है 24 नंबर पृष्ठ पे और पौड़ी नंबर 29 यानी शब्द नंबर 29, उसमें लिखा है एक समान दो सुवानी नाल भलके भोकाई सदा बियाल कोड़ छुरा मुठ मुर्दारिय धानक रूप रहा करतार। मैं पथ की पिंदन करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार। अब देखा क्या मपाणी भरकर कबीर परमात्मा ने वहां धानक का काम करते हुए जुलाई का काम करते हुए देखा काशी में, तो आख्या में पानी भिर गए जैसे सर्प न मणि चाहिए और कंगाल नंदन पाजा ओए होए, और पैसे न पानी भोखे न भोजन मिल जा, कितना खुश होता है ऐसे गुरु नानक देव जी वो प्यारी आत्मा अपने परमात्मा के दर्शन करके कैसे खुश हो रहे हैं। मैं पथ की बिंद न करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, अभी तक तो हम विकराल उस काल क्या ही जाप जपा करते थे, उसी क्या आधार पर रहते थे। तेरा एक नाम तारे संसार, तेरा सत नाम पार कर सके सच्चा नाम, सतनाम सतनाम ये कोई जाप नहीं। तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, मुझे भी उस सच्चे नाम की आस है और यही आधार मान लिया, कोई और सब मंत्र झूठ है। उस साथ सतनाम यानी सच्चे नाम का प्रमाण गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। उसके बाद फिर सारनाम गरीबदास जी कबीर साहब ने बाद में दिया था, जब वो कुछ ही समय के बाद सतलोक से ले गए थे, क्योंकि वो बड़े अधिकारी होने पर ही दिया जाता है सारनाम। तेरा एक नाम तारे संसार में ए हो आस ए हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, क्योंकि कबीर साहब पहले गए थे इनसे मिले थे, उसमें काफी चर्चा हुई थी और कबीर साहब आ गए थे ये नहीं माने थे और कहा था ये धानक क्या जाने ये दुलाहा ऐसे ही मूठ पटांग कर रहा है। गुरु नानक देव जी ने अपने मन मन में कहा और भक्तों से भी कहा कि ये तो कृष्ण से ऊपर बता रहा कोई भगवान है, कैसे माने। फिर दूसरी बार कुछ दिनों के बाद गए थे, जो सतलोक दिखा अपना रूप दिखा उसके बारे में कह रहे हैं कि मुख निंदा आख्या दिन रात, मैंने तो आपके बारे में बहुत कटु वचन कहे थे दाता माफ करना। गुरु नानक देव जी अक्षमा याचना करे प्रभु ते, मुख निंदा आख्या दिन रात पर घर जो ही नीच मनात, काम करो तर वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुक की वेश, फाई सूरत है ओ सूरत जो वहां देखी थी सतलोक में, अब यहाँ के मुल्क यहाँ के देश के आधार पर उन्होंने दूसरी वेशभूषा बना रखी है, दानक बने बैठे वहां जिंदा रूप में थे। फाई सूरत मुल्क की वेश ओ ठगवाड़ा ठगी देश, ये खरा सियाणा बहुते भार है, ये मामूली चीज नहीं है, बहुत भार अर्थात बहुत कीमती है, ये सर्वशक्तिमान है ये धानक रूप रहा करतार। खरा सियाणा बहुते भार ये धानक रूप रहा करतार, अपने आप को कितना विनम्र यानी आवश्यकता से अधिक विनम्र बता रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं। कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर, अपने आप को लताड़ रहे हैं गुरु नानक देव जी अपने प्रभु के सामने के। मैंने उल्ट सुलट बातें भी कह दी थी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। संत वैसे उलट सुलट नहीं कहा करते, इतना जरूर मन में आ जाता है कि ये अनजान है, ज्ञान नहीं है, और प्रभु के बारे में इतना कहना भी वो अपना दोष मान रहे हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं मैं कीता न जाता हराम खोर, मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुदेसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार है। अपने आप को कितना अधीन कहे। गरीबदास जी भी कहते हैं बांदी का जाम गुलाम 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 हो भाई, जिसने पार होना है ऐसे विनम्र होना पड़ेगा प्रभु के सामने, अभिमान से भगवान नहीं पावे। ऐसे ही ये प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी अपने प्रभु के सामने क्या कहते हैं, नानक नीच कह विचार, ये धानक रूप रहा करतार। ये रावे सोच समझ के कह रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा, ये बैठा भगवान दुनिया होगी इकट्ठी आस पास, आख्या में पानी चरणा में गिर गया अपने कबीर परमेश्वर के। आप सभी पढ़ रहे हैं अपने अपने ग्रंथों को, लेकिन कबीर परमात्मा की रजा बिना इनमें से ये माल निकल नहीं सकता, सामने नहीं आ सकता। उन्हीं की रजा से आज इस दास के ऊपर कृपा हुई, ये सब शास्त्रों का की मलाई आपके सामने आ गई। भरम गए जग भेद पुराना, आज राम का भेद न जाना, राम राम सब जगत बिछाने, राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। समझदार जो व्यक्ति होंगे इस कथाओं को सत्शास्त्रों को सुनकर हृदय से लगाओगे और भाग्य आओगे, काल से अपनी फांसी निकलवाएंगे, इन झूठे गुरुओं से दूर अपना पीछा छुड़वा लेंगे, जो स्वयं नरक जाएंगे इन भोली आत्माओं को लटका के ले जाएंगे। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। जो उन संतों के ज्यादा नजदीक रहने से, क्योंकि फिर अपना पनसा बन जाता है, ये भी दूसरा जाल है काल का कि है ये गुरु जी के पास तो बहुत रहते थे, कैसे छोड़ दे, शर्म आएगी, शर्म कहाँ होगी जब दोनों गधे बनेंगे, वह सारी शर्म शर्म निकल जाएगी, है 84 में धक्के खाने पड़ेंगे, इससे अच्छा गुरु जी भी और स्वयं भी अपना पीछा छुड़वा लो। ये ना सोचो ये दास आपको कोई शिष्य बनाने का शौक रखता, बिल्कुल नहीं। और यहाँ से जो नाम लेगा बीड़ी शराब मास्टमा को कभी प्रयोग नहीं करना, नाम लेना आपकी इच्छा ना कोई जरूरी नहीं, ज्ञान सुनकर। और जिसने परमात्मा को पाना है और विकार करे वो कभी पार नहीं हो सकता, ना कोई अन्य देवी देवता पूजना, हम जड़ की पूजा करेंगे, सत्कार सभी का होगा, अनादर किसी का नहीं, लेकिन पूजा जड़ से होगी, कभी परमात्मा की भक्ति करेंगे और फिर वो प्रटेनी होकर फल लगेंगे। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, नरेंद्र वाकी दार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। अक्षर पुरुष जो जमीन से बाहर दिखे वो अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म, फिर पेड़ का डार होती है वो ज्योत निरंजन, वो ब्रह्म, और उस डार का फिर तीन शाखा वो ब्रह्मा विष्णु महेश, और जड़ कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म। जड़ में पानी डालेंगे पौधा फलेगा, नहीं तो सूख जाएगा। अगर हम टहनियों को नीचे लगा दें जमीन में और जड़ ऊपर को कर देंगे, काहे की समझदारी, ऐसे ही सब समाज ऐसे किया हुआ है। अब इसको सीधा करेंगे और जड़ की पूजा करेंगे, बीड़ी शराब मास्टमा कुछ छूना भी नहीं है, और कबीर परमात्मा की कृपा से लाखों की संख्या में भक्तात्मा इस विकार से दूर हो गए, तुरंत छोड़ देते हैं और प्रभु साथ देता। कबीर साहब ऐसी बात नहीं, मालिक साथ देगा तभी ये काल के लगाए हुए जाल छूटेंगे। और फिर अन्य देवी देवता कुछ नहीं पूजना, जड़ सी की पूजा करनी है, अनादर किसी का नहीं। तिनका कभू ना नींद ये जो पाया तलय न हो, और कभी उड़ा क्या पड़े भाई फिर पीड़ गनेरी हो। निंदा नहीं करनी किसी की, किसी को अनादर नहीं करना, लेकिन पूजा तो विधिवत करने से बात बनेगी। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माँ अस्तंगी पिता निरंजन, ये दम दारुण वंशन अंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ तो अस्तंगी और पिता ये काल ब्रह्म। अब इसका आपको गीता जी में दिखाऊंगा, ये देखिएगा पवित्र गीता जी, और इसमें अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4 और 5 पे, श्लोक नंबर 3 है कि अर्जुन, हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्ममूल प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की, भूतमर प्राणियों की योनि अर्थात गर्भाधान स्थान है, गर्भाधान स्थान है, मैं काल बोल रहा है ये, मैं उस योनि में चेतन समुदाय गर्भ को स्थापन करता हूँ, उस जड़ चेतन संयोग से सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये 5, 4, 5, ये तीसरा सुना आपने, चौथे की संस्कार दिन ही के द्वारा देखना। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितने मूल मूर्तियां शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माँ है, और मैं काल ब्रह्म सबका पिता हूँ। और पांचवे में देखो कति कमाल कर दिया के, ये श्लोक नंबर 5 है, इसमें है कि हे अर्जुन, महाबाहो हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, रज है सत्वम, रजम तमम तमय, ये प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति शब्द आपको दिखाया था शिव महाप्राण और देवी भागवत महाप्राण में उत्पन्न, तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। तीनों गुण कौन, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये जीव को कर्म फंसाए रखते हैं, पार नहीं होने देते। अब गीता जी के गलत सरलार्थ करता और आपके वो नादान गुरुदेव आपको भ्रमित कर रहे हैं, वो कहेंगे कि कौन कहता है ये तीन गुण रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिवजी हैं। अब इसके लिए ये प्रमाण आपको साथ ही देता हूँ कि ये स्वयं स्वीकार करते हैं। और कौन कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकृति से उत्पन्न हुए, प्रकृति देवी कौन है, क्योंकि उनको ज्ञान तो है नहीं, आपन दे और इनको भी गेल नरक ले जाएंगे अपने अनुयायियों को बेचारों को। अब देखो ये देवी भागवत महाप्राण, ये कोई आज रचा हुआ शास्त्र नया नहीं, ये बहुत पुराना है। ये देखो आपके सामने श्री देवी भागवत मोटा टाइप, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये केवल हिंदी है और संस्कृत वाली भी मेरे पास है, वो भी दिखाऊंगा आपको। और इसके लेखक है ये देखिएगा, ये तो इनका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, यहाँ देखो ये हनुमान प्रसाद पोदार संपादक चमन लाल गोस्वामी, इसी के तीसरे स्कंद में, तीसरा स्कंद ब्रह्मा जी द्वारा भगवती चरणों में समस्त देवता आदि को देखना। ये देखो अब क्या कह रहा है विष्णु जी, यह संसार तुम्ही से उद्भासित है, हो रहा है, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, तुम्हारे से उत्पन्न हुए हैं, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हम तो जन्म और मरण, आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता, केवल तुम ही नेता हो, जननी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसी में फिर शिव शंकर भगवान, ये 123 नंबर श्लोक है, प्रश्न है, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, हे मालिक, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। अब ये अंधे गुरु आपको भी चला सकते हैं, पर ऐसे नहीं विचलित होने देंगे परमात्मा कबीर साहब आपको। अब गीता जी का समार्थ करते हुए इन महापुरुषों को कोई वास्तविक ज्ञान नहीं था, अब ये सामने आ रहा है सतमार्ग, तो ये अनजान गुरु कहेंगे आपको कि कौन कहता तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कौन कहता प्रकृति वो दुर्गा है, ये शास्त्र कहते हैं जिनके आधार पर तुम उनके गुणगान झूठे गाया करते थे। अब ये आपके सामने है वही देवी भागवत महापुराण संस्कृत सहित, इसमें स्वीकार करते हैं कि हम तो तमगुण आपने क्यों बना दिए माता। ये देखिए सटीक भाषा देवी भागवत सटीक सहमातम खेमराज श्री कृष्ण बम्बई प्रकाशन द्वारा। अब इसके अंदर तीसरे सकंद में आप देखिएगा, या देखो विश्व जी कह रहे हैं सब लोगों के सृजन करने की इच्छा करने वाले हरि ब्रह्मा और शिव, हरि विष्णु ब्रह्मा और शिव, यह सब तुम्हारी चरणोविंद की भक्ति और प्रीति को प्राप्त होकर कर सकते हैं। हे मात, हे प्रकृति, यदि हमारे ऊपर आप सदा दया युक्त हो तो हमको, शिव कह रहा मुझको तो तमोगुण बना दिया, प्रदान किया, और ब्रह्मा रजगुण और हरि सतगुण, हे मालिक आपके सामने है। किस, यहाँ देखो किस प्रकार स्थित किया, नीचे आएगा या? ये याद है, किस प्रकार युक्त किए हे मात बताओ, ये आपके सामने है, कोई नई बात नहीं है।